پھر کیا ہوگا, ہم آپ کے گھروں میں جھاڑو دیں گی, برتن مانجیں گی, کسی پرکار چڑھا لیں گی, اب آپ کو نہیں چھوڑے گی, آپ کے ساتھ رہیں گی. یعنی ہم آپ رہتے نا تو نہیں گرہن کر سکتے. کرنا تو ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیں گے سنسار کو اور سماج کو ہم دیکھ لیں گے. بس ان کو انگیکار کر لیا, تم کو پاسوانی کے روپ میں رکھیں گے, نوکرانی کے روپ میں نہیں, برتن مانجنے کے لیے تمہارے گھر میں ہزاروں بات یہ سب نوکرانیاں رہیں گی. جب تم نے ہمارا شرن گرہن کر لیا, سرو دھرمان پرتج, جو سب دھرموں کو چھوڑ کر کے کرشن کا شرن گرہن کرتا ہے اس کو وہ ایک دم اپنا بنا لیتے ہیں, ان کو اپنا بنا لیتے. یہ کامنا نہیں ہے, کام نہیں ہے, یہی پریم ہے. ایسے پرم دیالو ہیں, ایسے کرشن کو چھوڑ کر کے کس کا بھجن کرنے جائیں گے. پتر ان کو مارنے کے لیے آئی پران سے, اپنے سنوں میں بیس لگا کر کے, اور اس کرشن نے کیا کیا, اس کو ماتا کی, ارے ماتا کا بیس بنا کر کے آئی, بس گرو بندا بند اپنی میا بنا دیا ان کو. ایسا دیالو کون ہوگا؟ اس لیے کرشن ہی پرم تتو ہیں, پریم کی پرتشٹھا کرنے کے لیے جگت میں آئے. اس لیے ہرن تک بھی ان کو دے کر کے پرنے کی بھیک مانگتے ہیں. ندی جمنا کیا کرتی ہے؟ جمنا ندت تدا اپدھاج مکند دیتا آوست لکشت منو بھو بھگن بیگا آلنگن ثبت ارم بھجلی مرارے گرننتی باد جگلم کملو پہارا. یہ ندی ہے نا, کنتو ندی کی ادھشٹھاتری دیوی ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ندی میں تو پانی ہے, کنتو اس کی ادھشٹھاتری دیوتا ہوتی ہے. جیسے ہم شریر ہیں, شریر کا ادھشٹھاتری دیوتا آتما ہے, پہاڑوں میں بھی پران ہے اس کا بھی ادھشٹھاتری دیوتا ہے, ہوا میں بھی پون دیو ہیں, پانی کا ادھشٹھاتری دیوتا برون دیو ہیں. اس طرح سے بہت ریسرچ کے بعد میں ہمارے رشیوں نے ان ستیوں کو اپلبدھی کی اور تب اس کا پرچار کیا. یہ سب ایسے تیسے نہیں ہے, ہمارا بھارتیہ سنسکرتی ویدک سنسکرتی ایک ملک کے اوپر میں استھر ہے. اس کے ایک ایک بات سبت ہیں, آدمی نہ سمجھے وہ دوسری بات ہے. تو کیا بتلا رہا تھا؟ ندت تدا اپدھاج گیتا, کرشن نے بینو بجائی, اتنا سندر نرالا روپ من سمست وشو کا سارا سوندریہ سمیٹ کر کرشن کے انگوں میں سما گیا ہے. پینو بجاتے ہی جمنا جی کی دھارا جو نیچے جا رہی تھی لوٹ آئی, اور ادھر والی اوپر والی آ رہی ہے, تو اس سے کیا ہوا؟ بھرمر بن گیا. نیچے والی نیچے جا نہیں رہی بلکہ اوپر نہیں آ رہی دھارا لوٹ کر, اور اوپر والی آئی گئی ہے, اس لیے ایسا پانی گھومنے کا. جی اس کو پانی مت سمجھو گھومنے کی, منو بھو بھگن ویگا. منو بھو منے کہتے ہیں کام یا پریم. کرشن کی بنسی کی دھنی سے اور ان کے سندر روپ سے مادھوریہ سے جمنا جی کے اندر میں کرشن کی سیوا کی باسنا جگ اٹھی, اور اتارو ترنگے اٹھی کرشن کا آلنگن کرنے کے لیے. مانو ان کی ارمی کیا ہے؟ ارمی میں نے وہ بھجائیں ہیں کرشن کو آلنگن کرنے کے لیے یہاں تک آئیں, کنتو کرشن نے ان کے پرتی تنک بھی کام بھاؤ نہیں دکھلایا, تو جھٹ لجت ہو گئی, تو انہیں کے اتر کر کے ان کے چرنوں میں کملوں کا اپہار دینے لگ گئی. یہ کرشن کا سوندریہ اور پریم ہے. یہ پانی تک کو بھی, ندی تک کو بھی کرشن کے پرتی پریم ہو گیا. آکاش میں بادل چھا کر کے کرشن جہاں گوچارن کرتے ہیں, سورج کو بادل ڈھک لیتے ہیں اور ان پر سندر سندر کومل اور شیتل جل کی بوندے ان پر گراتے ہیں. پرتھوی گھاس سے بھر جاتی ہے ان کے چرن, ان کے گھاسوں پتے کہیں پتھریلی نکیلی یہ سب چیزیں نہیں آتی کرشن کا پریم دان کرنے کے لیے. لتاؤں کو بھی انہوں نے پریم دیا, برچوں کو برچ اپنی ڈالوں سے پھل پھولوں سے بھر کر کے اور نیچے اتر آتے کرشن کے چرنوں میں اپہار دیتے. ایسا کوئی اوتار نہیں پریم کے لیے, اسی لیے ان کو لیلا پروشوتم کہتے ہیں, رام کو مریادا پروشوتم کہتے ہیں. एक ही तत्व दो बातों के लिए जगत में आते हैं। इनका जन्म इस प्रेम की स्थापना करने के लिए, आत्मधर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए और वर्णाश्रम धर्म तीनों की रक्षा करने के लिए ये धर्म संस्थापना थाय संभव। अब जब ये आए कहां आए, कंस ने अपनी बहन को जेल में बंद कर दिया, विवाह होने जा रहा था, विवाह हो गया था, कंस स्वयं अपने हाथों से रथ हांक रहा था और अपने जमाई और बहन को लेकर के उनके घर में पहुंचाने जा रहा था वसुदेव जी को। जब वह अपने घर से निकला, बाजे बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, फूल की वर्षा हो रही थी, सज धज करके दुल्हन देवकी देवी को, उसका वो भाई लगता था, उसको लेकर के पहुंचाने जा रहा था। उसी समय हठात आकाशवाणी हुई, रे कंस दुष्ट कंस, तू जिसे बड़े सज धज कर और जिसको ले जा करके ले जा रहा अपने रथ पर चला करके, उसी के गर्भ से आठवा गर्भ तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारा ध्वंस करेगा। और सुनते ही एकदम नीचे कूद गया, तलवार हाथ पे ली और एक हाथ से देवकी का केश पकड़ लिया और दूसरे हाथ से तलवार लेकर के अभी मारी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मैया भी खत्म करूं जो बेटा हो ही नहीं। असुर लोग कैसे होते हैं, आकाशवाणी हुई, उसे डर गया जैसे इससे हमारा पद होगा, किंतु उसको झूठा करने के लिए मारने जा रहा है। यदि वो बात सत्य है, ये आठवें गर्भ से उसका जान हंता जन्म लेगा ही, तो विश्वास करना चाहिए था, तो विश्वास तो कर दिया। अब ये चाहता कि उस विश्वास को भी वो आकाशवाणी को झूठा बनाए, ये असुर लोगों का काम है। विश्वास किया, अर्ध कुप को तीन न्याय, मुर्गी का आधा भाग मांगा माना और आधा भाग नहीं। एक आदमी दो भाई थे, तो मुर्गी रोज सोने का अंडा देती, कुछ दिनों के बाद में दोनों में लड़ाई हो गई। उसने कहा जैसे मुर्गी दोनों में बांट ली जानी चाहिए। उसने कहा जो मुख्य तरफ में हमारा रहेगा और एक कभी कहा जो हमारा पीछे की रहेगा। दोनों में झगड़ा लग गया, जिधर से अंडा सोने की देती है वो हमारे तरफ रहेगा और तुम खिलाना, मुख तुम्हारे तरफ, और इसी के लिए दोनों में लड़ाई हुआ। अंत में किसी तरह से सुलह सपाटा नहीं हुआ। अच्छा तो हम काट करके विवाह कर लें, और बतलाओ काट करने से क्या होगा, अंडा मिलेगा। उसने सोचा कि पीछे वाला भाग हमको मिलेगा तो हम उसी से अंडा पैदा कर लेंगे, सब दोस्त पीछे वाला लेना है, किंतु ये नहीं जानते हैं काट देने के बाद में मुर्गी मर जाएगी और उसे अंडा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति ये सब संसार वालों की है। तो असुर लोग ऐसे ही होते हैं, उसको चार जैसे इसको मिथ्या बना दे, बस इसको हम और अभी काट दें, ये बच्चा होगा ही नहीं। वसुदेव जी ने कहा ये बात तो जरूर होगी ही, हो करके रहेगी, क्यों, ईश्वर में विश्वास करते हैं, जरूर होगी। अच्छा अब थोड़ी सी हमको प्रयत्न करने चाहिए। कैसे प्रयत्न करना चाहिए, कुछ लोग नौका में सवार होकर के कहीं जा रहे थे, एक नदी थी चौड़ी थी, उस नाव में करीब करीब 50 आदमी भरे थे। नौका जब चलने लगी आकाश साफ था, क्योंकि ज्यों ही आधी दूर तक पहुंचे इतने में नौ आकाश में मेघ छाए और बड़ी जोर से आंधी चली और उसमें नौका डगमगाने लगी। अब तो सभी डर गए, अब नौका डूबी। उसमें कोई एक संत महापुरुष थे, उन्होंने देखा कि नौका डूब रही है, भगवान की इच्छा है, इसलिए नदी का पानी लेकर के उनके पास में एक पीतल की बाल्टी थी लेकर के भागना आरंभ किया। अरे महापुरुष तू क्या कर रहा है, एक तो नौका डूब रही है, तुम ऊपर का पानी और इसमें कर। तो उनको अपने काम से काम धुन से धुन वो पानी वहां का भर करके और इसमें डालने लगे। लोगों ने उनको पकड़ने की चेष्टा की, माने नहीं। थोड़ी देर के बाद ही में भगवान की इच्छा से हवा बंद हो गई और नौका एकदम किनारे अब आने वाली थी और नौका दुबनी शांत हो गया, वातावरण सब ठीक हो गया। तो अभी महापुरुष ने कहा क्या किया, पानी लेकर के नीचे नदी तुलसी से नौके से उलिच नार में कहिए अब भद्रमानुष अब क्या तू कर रहा है, अब तो नौका आ गई है और ये डूबेगी नहीं, अब तो हवा भी शांत होगी, अभी इस क्या करें। तो यही तो कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा है जो न डूबे इसलिए इसका पानी में थूक रहा हूँ। भगवान जो चाहता, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं तुम लोगों का किसी का नहीं, भगवान की जो इच्छा होगा उसमें करेंगे। इसलिए वसुदेव जी सोच रहे हैं ये जब आकाशवाणी है जरूर सत्य होकर रहेगी ही और थोड़ा सा निमित्त बन जाना है। उन्हें कहा भले मानुष क्यों मार रहे हो अपनी बहन को, तुम्हारी बहन है ना, अरे इसका लड़का होगा तो मैं तुझे, यदि लड़की होगी तो तुम्हारे लड़के के साथ में इसकी शादी कर दूंगा और लड़का होगा तो तुम्हारी लड़की होगी तो हम शादी कर लेंगे। अरे बहन को स्त्री जाति को मारना नहीं चाहिए, तुम्हारी बहन तो है ना, मत मारो। इसका लड़का होगा तो मैं आठवां लड़का, क्या मैं सभी लड़के तुमको देंगे, जिसकी इच्छा होगी तुमको मार डालना या रखना। अच्छा तो ठीक बात है, इनकी सत्यता पर उनको विश्वास था, लड़का होगा देगा ना, तो हाँ तो ठीक है। अच्छा तो पहले अभी जेब में बंद कर देते हैं, अभी देखते हैं क्या हो गया। बहुत जल्दी समय हो गया, 5 मिनट का समय। साथ ही साथ में उन्होंने कहा जाता लड़का दे देंगे, बस जेल में बंद कर दिया। आसपास लड़का का पहला लड़का हुआ, उन्होंने दे दिया, अरे बहुत अच्छा अब घर में जाओ। वे प्रसन्न नहीं हुए न कुछ हुआ। अब धीरे धीरे एक एक पुत्र होता गया, उसको छोड़ता गया कि ये आठवां होगा तब देखें। इस समय नारद महाराज जी पहुंच गए, कहिए ये भले मानुष तू क्या कर रहा है, ये सभी बड़े हो जाएंगे, उनकी गिनती भी कोई ठीक नहीं है, यदि 7वें से करेगा तो छठा हो जाएगा आठवां, और 1 से करेगा तो आठवां होगा, और 8वां से करेगा तो फिर 7वां हो जाएगा आठवां, इसलिए कोई ठीक नहीं। विष्णु वैसे ही विष्णु है, बहुत भूत आदमी है, कोई भी ठीक नहीं, ये क्या आप क्या करेगा, इसलिए ये बड़े होंगे सभी पक्ष लेकर के 8वें का तुम्हें मारेंगे। बस उनके चक में आ गया, क्यों, जब तक ये पाप का घड़ा नहीं भरेगा ये मरेगा नहीं बदमाश, इसलिए जल्दी से पाप का घड़ा भरे। जीवात्मा अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता, शरीर का ही है, उनका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। नारद जी का दोष नहीं, उनका कल्याण करने के लिए ऐसा किया। अंत में 8वें गर्भ से पैदा हुए, कहां पर पैदा हुए, कंस के कारागार में आधी रात के समय में, किंतु जन्म नहीं हुआ, ये मार्के की बात। क्या हुआ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यहां पर देवकी हितकारी, चतुर्भुज रूप में पैदा हुए, 16 वर्ष के जैसे सब श्रृंगारों से भरे हुए, लंबी लंबी चोटी और यहाँ पर मुकुट सोने का, कंगन और अच्छी धोती पीताम्बर इत्यादि पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। ऐसा कोई बेटा होता है किसी को 16 वर्ष के जैसे, तो यहाँ पर प्रकट हुए, पुत्र के रूप में पैदा नहीं हुए, यहाँ पर जन्म लीला नहीं है, प्रकट हो गए जैसे खम्भ से प्रकट हो गए, तो उसको जन्म मानेंगे, इसलिए यहाँ पर जन्म की लीला नहीं, आविर्भाव। भगवान ऐसे ही प्रकट होते हैं, किसी के गर्भ से पैदा नहीं होते, किंतु ये दिखाना था कि भक्तों की कृपा करने के लिए जन्म की लीला भी कराते हैं, इसलिए यहाँ पर आंशिक रूप में पैदा हुए ऐश्वर्य के साथ में, कहा देवी के, और साथ ही साथ में उसी समय उसी क्षण में उसी आधी रात में यशोदा जी के गर्भ से पैदा हुए, कैसे, नर बालक के ठीक उसी समय में यहाँ पर परिपूर्ण रूप में आए, रसो वैसा हो कृष्ण स्वयं रूप में यशोदा के रूप में आए, ये जो है यहाँ पर यही ब्रजेंद्र नंदन, आराध्य भगवान ब्रजे सतन धाम वृंदावनम रम्या का चितुपासना पद पद पर गई निजा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्। अब इसके व्याख्या दूसरे दिन, आज वहाँ पर शाम को कथा होगी, तो उस शाम को कृष्ण की लीलाएं, और कल यहाँ पर होना है, कल कृष्ण की दामोदर लीला इत्यादि बड़ी सुंदर मधुर लीलाओं को मैं श्रवण करा करके और फिर अपनी लीला कथा समाप्त। आप लोग इसमें भक्ति को ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे, जो लोग भक्ति को नहीं करेंगे ग्रहण, भगवान का नाम नहीं लेंगे, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते, ये तम ध्रुव निश्चित है, चाहे पृथ्वी बदल जाए किंतु ये सिद्धांत बदल रहे हैं। काम यह है, बाल मथे बल हो या घृत, बाल मथे, बाल माने पानी, हो गए सिकताते बनते बिनु हरि भजन न भवतरीय। यह सिद्धांत अपेल, इसको ठीक समझें। पड़ोसियावर रामचंद्र जी जोर से गौर प्रेमानंद
भक्ति में लगे तो उससे भी मन की शांति होगी। एक पॉइंट जिन्हें हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं विज्ञान के, विज्ञान जो है इतना पीछे है हमारे धर्म के सामने कि जितनी चीजें धर्म में बताई गई है विज्ञान उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, हमारे धर्म में माता का स्थान सबसे पहले दिया गया है। हम राधे कृष्ण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, हम तुम्हें वो पिता नहीं बोलते, माता का स्थान पहले देते हैं। इसका एक साइंटिफिक प्रूफ आपके सामने हम देने जा रहे हैं, क्योंकि साइंस बहुत पीछे है, थोड़ी थोड़ी बातें अभी समझना शुरू किया है साइंस। हमारे शरीर में जो शक्ति होती है, स्वामी जी ने अभी बताया कि कृष्ण जी की जो शक्ति थी वो राधिका जी थी। वहां भी देखिए जेंडर है मेल फीमेल का। हमारे आपके सबके बॉडी में जो सेल्स हैं उसके अंदर एक ऑर्गेनेल्स है, उसको बोलते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है माइटोकांड्रिया तक जाती है, और एक एक सेल जो है उससे सांस लेता है। अगर माइटोकांड्रिया डिफेक्टिव हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं और मृत्यु हो जाएगी सेल की। तो माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, और हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। देखो माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द ऑर्गन, और हमारा आपका शरीर जो है बड़े सारे ऑर्गन से बना हुआ है। देखो माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ दिस होल बॉडी। हमारे आपके शरीर में जो माइटोकांड्रिया है वो केवल मां से आती है, पिता से नहीं आती। इसलिए जो हमारे घर में बताया गया है माँ का स्थान सबसे पहले, जो शक्ति हमको मिलती है वो माँ से मिलती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है माँ के, तो हम माँ के स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। माँ क्या सोचती है, क्या खाती है, क्या पीती है, उसका डायरेक्ट असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो हमारे घर में चीजें बताई गई हैं वो एब्सोल्यूट नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। हम जो वैज्ञानिक आज तक काम करते हैं वो एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, उसको हम रिसर्च बोलते हैं, हम रिसर्च करते हैं। तो ये सत्य है कि जो हमारे धर्म में बताया गया है वो एब्सोल्यूट नॉलेज, हमारे ऋषि मुनि ने बहुत प्रयत्न करके चीजें हमको बताया है, इसलिए हमको उसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आजकल के जो हम लोग हैं उसका हमको कारण चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा क्यों बताया गया है। वो साइंस वहां तक पहुंची नहीं है, धीरे धीरे साइंस सीख रही है। तो स्वामी जी ने जो बताया है हम उस पर ध्यान दें, अपने जीवन को उस पर चलाएं, तो हमको अवश्य सुख और शांति का अनुभव होगा। हम स्वामी जी को बड़ा बड़ा धन्यवाद देते हैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और मंदिर की ओर से। धन्यवाद स्वामी जी।
उनको लगभग अपारत है जो आज मंदिर में पहली बार आए हैं, और उनसे निवेदन है कि हर रविवार की प्रधानमंत्री में आकर मंदिर के कार्यक्रमों में अपना योगदान दें। धन्यवाद। आदमी दोस्तों, मंदिर में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें सभी भक्तों और उनके माता पिता का योगदान अति आवश्यक है। ये कार्यक्रम की सफलता उसी बंदे में करती है। आगे आने वाले कुछ कार्यक्रम में सबसे प्रथम आ रही है जून 6 को गीता पारायण। समझा करके आप सभी को विस्तार से समझाएंगे ये गीता पारायण किस प्रकार से होगा। आप सभी जानते हो विष्णु जी किस समय